का था, रूह वही रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी आकांक्षा, और इसे लिखा है प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक गी द मोपासा ने। कतिपय व्यक्तियों की पैदाइश कुछ तयशुदा प्रभावशाली आदतों को लेकर ही पूर्ण होती है। उन आदतों में उनकी कोई हसरत या धनोपार्जन का लक्ष्य होता है। विचार करने व बातचीत करने की उम्र को जैसे ही ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, अपने विचारों को व्यवहारिक रूप में तब्दील करने और उसे मान्यता प्रदान करने की मजबूत भावना रखने लगते हैं। बाल्यावस्था से ही महज एक सोच मोंसियर कैलार्ड के जहन में थी, और वो थी प्रतिष्ठित होने की, सम्मानित होने की और पुरस्कृत होने की। जिस प्रकार कई बच्चे लड़कपन में शौक शौक में सैनिकों की टोपी लगाया करते हैं, उसी प्रकार जब वो बहुत छोटे थे तभी से सामान्य खिलौनों के रूप में मिलने वाले जस्ते में धातुई सर्वोच्च सम्मान के पदक इत्यादि अपने कपड़ों पर लटकाया करते थे, और बहुत गर्व से अपनी माँ का हाथ थाम अपने नन्हे से सीने को शान से फुलाकर, जिस पर वो धातुई नकली पदक या लाल फीता लटकता होता था, सड़कों पर घूमा करते थे। शुरुआती पढ़ाई में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। जब वे बीए की परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो गए और उन्हें जब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो उन्होंने एक बेहद सुंदर और सुसंस्कृत लड़की से विवाह कर लिया, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की पर्याप्त खानदानी जायदाद थी। वो भी दूसरे मध्यम वर्गीय रईसों की तरह पेरिस में रहा करते थे, और दूसरे सामान्य स्तर के लोगों के पास न जाकर एक उपमंत्री से मामूली परिचय होने की शान तथा इस उम्मीद से कि वे भी किसी दिन मंत्री बन जाएंगे, वे अपने स्तर के लोगों से ही मिला करते थे। सेना की टुकड़ियों के दो साधारण अधिकारी भी उनके विशिष्ट मित्रों में थे, किंतु मोंसियर कैलार्ड खुद को महज एक लगातार रहती चिंतन प्रक्रिया से मुक्ति नहीं दिला पा रहे थे। वो सदैव दुखी रहते थे, क्योंकि उनके पास अपनी पोशाकों के काजों में बांधने के लिए उचित विशेष लाल फीता नहीं था। जब वे किसी शख्स से भेंट करते और देखते कि उसे पूर्व में उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो वे उसे ईर्ष्या से निरंतर देखते ही रह जाते। कभी कभार जब दोपहर को उन्हें करने को कुछ कार्य नहीं होता, तो वे उन्हें मिले हुए लोगों की गिनती करते और स्वयं से कहते, जरा मैं भी तो देखूं कि मेडलिन और यू डायर के मध्य में कितने लोगों से मिल चुका हूं। अक्सर गंभीरता से चलते हुए वे अपने तजुर्बेकार नेत्रों से सम्मान के मामूली से लाल फीते के लिए बेहद सतर्कता से मुआयना करते, और जब वे मार्ग तय कर लेते तो अंत में संपूर्ण संख्या जोर से बोलते, 8 अफसर और 17 वीर सिपाही। इतने सारे, अरे ये सब मूर्ख हैं कि वे सब इस प्रकार प्रदर्शन करते हुए चलते हैं। मुझे हैरत है कि वापसी में मुझे जाने कितने लोग और मिलेंगे। उसके बाद वे दुखी होकर धीरे धीरे लौटते। उन्हें वे तमाम स्थान मालूम थे जहां अक्सर ऐसे लोग मिल जाया करते हैं। वो अधिकतर या तो रॉयल पैलेस में एकत्र होते थे, या कुछ लोग रुजेला पैक्स की बजाय एवेन्यू ओपेरा में भी नजर आते थे। इसके पश्चात जब वे पुनः घर जाते तो मार्ग में इतने अधिक पदक देखकर वो ठीक ऐसे खींच उठते जैसे कोई क्षुधित भिखारी किसी बड़ी बेकरी की दुकान को देखकर क्रोधित हो उठता है। वो खुद से ऊंची आवाज में कहते, कब हमें ऐसी नालायक सरकार से मुक्ति मिलेगी। उनकी पत्नी दंग रह जाती और सवाल करती, अरे आज तुम्हें क्या हो गया है। वो जवाब देते, हमारे इर्द गिर्द जो अन्याय हो रहा है वो देखकर मैं बहुत दुखी हूं। ओहो बेशक, लेकिन और लोग तुमसे कहीं ज्यादा दुखी हैं। रात्रि के भोजन के पश्चात वो पुनः उन दुकानों को देखने चले जाते जहां सर्वोच्च सम्मान के विभिन्न प्रकार के पदक और चक्र बेचे जाते थे। वे अलहदा रंगों और आकारों के सैनिक सम्मान के चिन्हों को बड़े ध्यान से देखते और इस सब को प्राप्त करने की इच्छा करते कि गर्व से सीना फुलाए, वो इन समस्त तमगों को अपने सीने पे सजाए, अनेक प्रशंसकों की भीड़, सम्मान देखने वाले लोगों के सबसे आगे अपने हैट को बाजू में दबाए चलें। किंतु अफसोस, उन्हें किसी भी तरह के सम्मान सूचक चिन्हों को धारण करने का कोई हक ही नहीं था। वो खुद अपने आप से कहते, सच में किसी भी शख्स के लिए पुरस्कार पाना बेहद कठिन है, जब तक उसने कोई विशेष काम या सेवा ना की हो। यदि मैं सेना में कोई अधिकारी बनाए जाने की बात सोचूं तो? लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस विषय को वो तय कैसे करें, और हताश होकर उन्होंने अपनी चकित पत्नी से इस बारे में चर्चा की। सेना का अधिकारी? अब अधिकारी बनने के लिए आपने ऐसा किया क्या है? पत्नी ने पूछा। वो क्रुद्ध हो गए। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो महज ये जानना चाहता हूं कि मैं इस कार्य को आरंभ कैसे करूं। कभी कभी ना आप कतई पागलों जैसी बातें करते हैं। एक विचार उनके जहन में उमड़ा। वो पत्नी से बोले, यदि मैं तुम्हें मोस्योर रोजलीन से कुछ कहने को कहूं तो शायद वो मुझे कुछ सुझा सकता है। तुम तो समझती हो कि मैं स्पष्ट तौर पर उनसे ये सब कुछ नहीं कह सकता। ये एक बेहद मुश्किल और कठिन और नाजुक सब्जेक्ट है, किंतु संभवतः तुम्हारे द्वारा उससे कहने से वो सब कुछ थोड़ा सामान्य और सहज लगेगा, नहीं? मिसेस केलॉर्ड ने वही सब कुछ कहा जो कि उसके पति द्वारा बताया गया था, और मोस्योर रोजलिन ने इकरार किया कि वो इस बारे में मंत्री से बात करेंगे। उसके पश्चात केलॉर्ड ने उन्हें तब तक परेशान किए रखा जब तक उपमंत्री ने उनसे ये नहीं बोल दिया कि वो एक औपचारिक प्रार्थना पत्र पेश करें और अपने लिए किसी बेहतर पद की मांग करें। वो किस तरह काबिल है, उसने सोचा। वो बीए तक तो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का वो कोई फैसला नहीं कर सकता। और अंततः उन्होंने जनता को शिक्षा का आधार नामक शीर्षक से एक इश्तिहार निकाला, किंतु उसे भी अपनी वैचारिक अस्थिरता की कमी की वजह से वो पूरा नहीं कर सके। अब उन्होंने कुछ आसान विषय चुने और कामयाबी से उन पर लिखना आरंभ किया। उनका पहला विषय था आंखों के द्वारा बच्चों की शिक्षा। वो चाहते थे कि पेरिस में बच्चों के लिए इधर उधर छोटे छोटे शिक्षा मंदिर चलाए जाएं, जहां बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को लाएं और सिनेमा के चित्रों की सहायता से उन्हें मानवीय ज्ञान से अलहदा पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाए। इस संदर्भ पर लगातार कक्षाएं लगाई जाएं ताकि उन चित्रों का प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर पड़े, उन्हें ज्ञानवान बनाए और इस प्रकार विज्ञान में उनकी रुचि बढ़े। इसी तरह उन्हें अन्य विषय जैसे कि प्राणीशास्त्र, शरीर विज्ञान, इतिहास, भूगोल व वनस्पति शास्त्र इत्यादि भी आसानी से पढ़ाए जा सकें। उन्होंने अपनी ये नूतन योजना छोटे छोटे कागजों में प्रकाशित करवाई और हर एक उपमंत्री को एक, हर एक मंत्री को 10-10, राष्ट्रपति को 50, हर एक मेयर को 10 और स्थानीय अखबारों में 5-5 प्रतियां प्रेषित की। उसके पश्चात उन्होंने लघु भ्रमणशील पुस्तकालय के बारे में लिखा। उनका परामर्श था कि संतरे बेचने वाली गाड़ियों की भांति छोटी छोटी हाथ गाड़ियों में पुस्तकें भरकर सड़कों पर लाई जाएं, ताकि हर एक आशार्थी गृहिणी आधी पेनी शुल्क द्वारा महीने में 10 किताबें पढ़ने हेतु किराए पर प्राप्त कर सके। मुस्योर का विश्वास था कि इस कारण लोग अपने शौक को नहीं दबाएंगे और इस तरह ज्ञान का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि ज्ञान खुद उनके द्वार पर आएगा। इस प्रकार के नए सुझाव प्रदान किए गए। उनके निबंधों का प्रजा या शासन पर तो कोई खास असर नहीं हुआ। तब भी उन्होंने अर्जी भेज दी और उनको शासन की तरफ से प्रत्युत्तर भी मिला। वो अपनी भावी कामयाबी के लिए भी निश्चिंत हो गए, किंतु इतने पर भी हुआ कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने निजी रूप से शिक्षा मंत्री से भेंट करने, उन्हें प्रार्थना पत्र देने की बात सोची। वो उनके निजी सहायक से मिले जो बिजली की घंटी बजा बजा कर आगंतुकों, आवेदन देने वालों और मंत्री के नीचे अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाया करता था। उन्हें मंत्री के सहायक ने बताया कि उनके आवेदन पर बेहद हमदर्दी से विचार किया जा रहा है। उन्होंने परामर्श दिया कि वो अपनी कोशिशें लगातार उत्साह के साथ जारी रखें। इसलिए उनकी ये बात सुनकर मुस्योर कैलार्ड ने फिर से पूर्ववत कार्य को और ज्यादा तेजी से करना आरंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि मुस्योर रोजलिन जो उपमंत्री हैं, अब मुस्योर कैलार्ड के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। उन्होंने उसे बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान की बातें सुझाई। रोजलिन को भी बेहद सम्मानित किया गया, किंतु कोई नहीं जानता था कि वो सम्मान दिए जाने योग्य उन्होंने ऐसा कौन सा विशिष्ट कार्य किया था। उन्होंने कैलार्ड को बताया कि कौन से नए विषय लेने चाहिए। उन्होंने उनका परिचय कुछ अच्छी सम्मानित व नामचीन समितियों में भी करवा दिया, जो सम्मान की दृष्टि से मान्यता प्राप्त करने की उम्मीद से विशेषकर विज्ञान के गूढ़ विषय के बारे में शोध किया करती थी। मुस्योर कभी कभी अपने मंत्री साथियों से भी कैलार्ड की भेंट करवा दिया करते थे। एक दिन जब मुस्योर रोजलिन अपने मित्र कैलार्ड के घर भोजन करने आए, जैसा कि वो गत कई महीनों से निरंतर करते आ रहे थे, उन्होंने कैलार्ड से हाथ मिलाते हुए धीरे से बताया,
मैंने हाल ही में तुम्हारे लिए एक बड़ी मजबूत सिफारिश की है। जल्दी ही इतिहास विषय की एक शोध समिति तुम्हें एक बड़ा कार्य सुपुर्द करने वाली है। फ्रांस के विभिन्न पुस्तकालयों में कुछ बड़ा शोध कार्य किया जाना है
और आगामी सप्ताह ही वो शोध कार्य के लिए बाहर भेज दिए गए। वो विभिन्न शहरों में गए, धूल से अटे पुराने बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखा, परखा और जल्दी ही सभी बड़े पुस्तकालयों के तमाम अधिकारियों के लिए अच्छा खासा सिरदर्द बन गए। एक दिन जब वो शायद रोयून में थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी पत्नी से मिलने घर जाना चाहिए, जिससे कि वो पिछले एक सप्ताह से बिछड़े हुए हैं। उन्होंने रात्रि 9 बजे की ट्रेन ली, जो 12 बजे के लगभग उन्हें उनके नगर तक पहुंचा देती। एकाएक पहुंचकर अपनी पत्नी को हैरत में डाल देने के विचार से वो दबे पांव बिना कोई आहट किए घर पहुंचे। घर का द्वार बंद था, उनकी पत्नी भीतर थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर भी किसी तरह उन्होंने द्वार खटखटाया।
जेनी, मैं हूं, दरवाजा खोलो,
उन्होंने स्पष्ट किया। वो जरूर डर गई होगी, क्योंकि कैलार्ड ने अपने बिस्तर पर से नीचे और खुद से बात करने की ध्वनि सुनी थी, गोया वो गहरे ख्वाब में डूबी हो। उसके पश्चात वो ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ी। उसने उस कक्ष का द्वार खोला और बंद किया। तब पुनः 2-3 दफा नंगे पांव वो अपने कक्ष में आई और गई, फर्नीचरों को खिसकाया, करीने से रखा और अंत में उसने पूछा, तुम ही हो क्या अलेक्जेंडर?
हाँ हाँ,
उसने व्यग्रता से उत्तर दिया। अरे जल्दी करो और दरवाजा खोलो, भीतर से पत्नी ने द्वार खोल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो उसकी बाहों में झूल गई।
ओह, मैं कितनी खुश हूं कि तुम लौट आए हो।
कमरे में दाखिल होते ही वो एक एक करके अपने कपड़े धीरे धीरे उतारने लगे। उन्होंने कुर्सी से अपना ओवरकोट उठाया, जैसा कि उसे दीवार पर टांगने की उनकी नियमित आदत थी। किंतु अचानक वो स्तब्ध रह गए और हैरत से सन्न हो गए। ओवरकोट के बटन के काज में एक लाल फीता बंधा हुआ था।
क्यों?
उन्होंने कठोरता से पूछा।
इस ओवरकोट में ये लाल फीता क्यों लगा है?
अगले ही पल उनकी पत्नी पुनः उनसे लिपट गई और उनके हाथ से ओवरकोट लेते हुए बोली,
अरे नहीं नहीं, वो शायद तुमने भूल कर दी, ये मुझे दे दो।
पति ने अब भी ओवरकोट को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने नीम पागलपन की अवस्था में दोबारा पूछा,
ओह आखिर क्यों? मुझे बताओ ये किसका ओवरकोट है?
ये हरगिज मेरा नहीं है,
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सम्मान पदक लगा है।
पत्नी ने उसे हाथ में लेने का प्रयास किया। डरी हुई वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी।
सुनो, ये मुझे दे दो। अरे मुझे तुम्हें अभी ये रहस्य नहीं बताना चाहिए था, ये एक राज की बात है। बात को संभालने का प्रयास करते हुए वो बोली।
वो क्रुद्ध हो उठे और अगले ही पल एक अनजाने खौफ से पति का चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया। मैं जानना चाहता हूं ये ओवरकोट यहां पहुंचा कैसे, ये मेरा नहीं है,
पत्नी ने तकरीबन सुबकते हुए कहा। हाँ ये यहां लाया गया है, ईश्वर के लिए आप मेरा यकीन करें, सच में आपको सम्मानित किया गया है।
ये सुनकर वो क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने ओवरकोट को वहीं पटक दिया और आराम कुर्सी में धंसते हुए कहा,
तुम मुझे कहती हो कि मुझे सम्मानित किया गया है?
हाँ, लेकिन अभी ये एक राज है, गहरा राज।
उसने उस मूल्यवान वस्त्र को अलमारी में बंद कर दिया और कांपते हुए और उतरे मुरझाए चेहरे वाले पति के करीब आ गई।
हाँ, उसने कहना आरंभ किया, हाँ ये एक नया ओवरकोट है जिसे मैंने राजदारी में तुम्हारे लिए सिलवाया था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि शासकीय तौर पर कोई एकाध महीने तक इसके विषय में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी, और तुम्हें तो तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक तुम अपनी शोध यात्रा से लौट कर नहीं आओगे। मोस्योर रोजलिन ने तुम्हारे लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं।
उपमंत्री मोस्योर रोजलिन?
मोस्योर रोजलिन, वो प्रसन्नता से चीख उठा। उसने मेरे लिए इस सम्मान, इस पुरस्कार का इंतजाम किया है। ओह गॉड!
और उसने राहत के बाद एक गिलास ठंडा पानी पीना चाहा। सफेद कागज का टुकड़ा ओवरकोट की जेब से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। कैलॉर्ड ने उसे उठाया। वो विजिटिंग कार्ड था। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। रोजलिन, उपमंत्री।
देखा तुमने, ये है वो बात,
उसकी पत्नी ने संभलते हुए कहा, और तब वो तकरीबन खुशी से चीख उठा। कोई एक सप्ताह पश्चात सेना मुख्यालय के शासकीय गैजेट में घोषणा की गई, मोस्योर कैलॉर्ड को उनकी विशिष्ट सेवाओं हेतु सर्वोच्च सम्मान के पदक से अलंकृत किया गया है। आप सुन रहे थे कहानी आकांक्षा, और इस कहानी के लेखक हैं मशहूर फ्रेंच राइटर गीद मोपासा। गाथा के जरिए आप तक इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।